ओम ज्ञानदेवं नन्दसिज्ञानाञ्जनश्राकः चक्षुरनुतं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूत स्वयं रूपकदामयं दादि स्मदानकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु ध्यानं षड्वैतकदादर शिवासादि कौरव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो मायावादी विषय में भगवान ने बता दिया कि वो तो अबुद्धय है। तो ये अबुद्धय का अर्थ होता है कि बुद्धिहीन। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उस समय भी बड़े बड़े दो प्रखर मायावादी थे, एक तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो प्रखर मायावादी बृहस्पति का अवतार था, इंद्र का गुरु पूर्व जन्म में, लेकिन उनके माध्यम से भगवान ने मायावाद सिद्धांत को काटा। फिर ये प्रकाश आनंद सरस्वती कितना हजारों मायावादी सन्यासियों के लीडर थे, नेता वाराणसी में। तो वाराणसी एक्चुअली अड्डा माना जाता है मायावादियों का, वहां पर संस्कृत के बहुत सारी पाठशालाएं हैं और उन लोगों को संस्कृत के ग्रामर में और इसमें एक प्रकार का एंटरटेनमेंट प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार का एंटरटेनमेंट, किसी को स्पोर्ट्स में गेम खेलने में, खेलने कूदने में होता है। इस प्रकार से ये ग्रामर भी एक प्रकार का एंटरटेनमेंट बनाकर रखा है और उसमें फिर वो खेलते रहते हैं। इतना विद्वान होता है इसलिए उनके साथ संस्कृत में बहस में नहीं घूमना। अगर कोई ऐसा मायावादी संस्कृत विद्वान आ जाए तो उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं करना, अनलेस अगर आपके पास स्ट्रांग कन्विक्शन है और स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स है।
विष्णु प्रभु बता रहे थे एक बार वो सोमनाथ गए थे, उनको वहां इन्वाइट किया लेक्चर के लिए, तो वहां पे आने से पहले फिर वो जो प्रमुख थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी है ऑडियंस वो सबको 700 के 700 श्लोक कंठस्थ है गीता के, तो उन्होंने ऐसी प्रभुपाद के बारे में बोला
क्योंकि वो उन लोगों को फायदा नहीं है, वो अननेसेसरी उसमें पढ़ना नहीं है। एक शंकराचार्य जो पीठाधीश होता है ना, तो ऐसे चार पीठ है पूरे इंडिया में, तो इसमें से एक पीठ का जो गुरु है वो अपने टेंपल में विजिट करने के लिए आए थे शंकराचार्य। तो वो भगवान की दया से वो एक अच्छे नेचर वाला आदमी निकला, शंकराचार्य था। तो उसने यशोमा चंदन प्रभु के साथ चर्चा की और प्रभु जी ने उनके वैष्णव सिद्धांत के अनुसार उनको बताया, और पहले तो थोड़ा 5-7 मिनट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, लेकिन उनका दोनों का बात करने का ढंग मधुर था ताकि किसी को ऐसा लगे नहीं कि ये लोग आपस में ओपिनियन डिफरेंस है, ऐसा लगे नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया कि आप जो बता रहे हो वो सच है। अभी अंदर से बोला बाहर से बोला भगवान जाने, लेकिन बता दिया ऐसा कि आप जो बता रहे हो वो सच है। सो मायावाद के विषय में जब भगवान ने ऐसा बताया, फिर भगवान ने कहा कि भगवान मेरा स्वरूप, मेरे लक्षण, मेरा धाम, ये सब कुछ शाश्वत है। सब कुछ पहले तो बता दिए, सब कुछ शाश्वत है, भगवान का ऐसा नहीं नष्ट हो जाता है। मायावाद का एक एक वन मोर प्रिंसिपल ऐसा भी है कि मैं भगवान में जाकर के विलीन हो जाऊंगा। जब अभी तक माया में हूं मैं, इसलिए मैं भगवान से अलग हूं, जैसे ही माया का पर्दा हट जाएगा मैं भगवान में जाकर विलीन हो जाऊंगा या फिर मैं ही भगवान बन जाऊंगा। वो ऐसे कान पकड़ना चाहे लेकिन वो भगवान बन नहीं पाया, भोक्ता बनने का प्रयास किया, उसने दुनिया भर का भोग भुगतने का प्रयास किया, स्वामी बनने का प्रयास किया, हो नहीं पाया, फेल हो गया। तभी शरणागत हो गया ये सोच करके ऐसे भगवान नहीं बना तो ऐसे भगवान बन जाऊंगा, लीन होकर के भगवान बन जाऊंगा। तो बात तो वहीं पर आ गई, तो भगवान ही बनना चाहता है, भगवान का स्थान लेना चाहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये लोग नहीं समझ पाते, वो टेक्स्ट नंबर 25 में भगवान बताते हैं।
मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञ के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ।
हाँ, ये मूर्ख और धूर्त लोग जो है उनको सामने प्रकट नहीं होता। क्या नाम है उस श्लोक का, शुरुआत क्या है?
ना हम प्रकाश
सर्वस्य योग माया समावर्त। मूढ़ोयम ना भी जाना थे, मूढ़ोयम ना भी जाना थे, माम अजम अव्ययम, मैं अजम, मेरा अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, ऐसा मूढ़ लोग नहीं समझ पाते। और ये हम नहीं कह रहे, प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति ने कहा था कि आप इस तरह से किसी को रास्कल कैसे कह सकते हो, हाउ यू कैन से कॉल मूड इज रास्कल, मूड हो या ना भी जाना, आप इस तरह से किसी को, हम आपको केस कर सकते हैं, आप किसी को इस तरह से कह नहीं सकते रास्कल। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए केस करना है ना तो भगवान पर कीजिए, कृष्ण पर कीजिए, क्योंकि मैं तो रिपीट कर रहा हूं उनकी बात को, मैं क्या, मैं तो बोला नहीं आपको रास्कल, मैं थोड़ी आपको रास्कल, वो तो भगवान रास्कल बोल रहे हैं आपको, व्हाट कैन आई डू इन दिस, भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि यू आर रास्कल, मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूढ़ व्यक्ति नहीं समझ पाते, माम अजम अव्ययम। स्टार्टिंग था ना हम प्रकाश से सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, सबके सामने ऐसा नहीं होता कि कोई भी आकर के भगवान को मेरे सामने प्रकट हो, क्यों भाई क्यों प्रकट हो, एक तो रीजन बताओ क्यों प्रकट हो भगवान आपके सामने। कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान है तो दिखाओ, क्यों दिखाए, आप ऐसे कौन हो कोई बड़े महात्मा हो के आपको दिखाए।
एक मूवी आई थी जिसमें बताया था कि कोई, अभी रिसेंटली आई थी, जिसमें बताया था कि भगवान आ गए उनके सामने वगैरह वगैरह, तो ये श्लोक इसका खंडन करता है। वो जो पुणे इसको जो ड्रामा किया था उसमें बहुत अच्छी तरह बताया था क्यों भगवान के सामने, भगवान खुद बोलते हैं मैं नहीं जाता हूँ ऐसे,
वो स्वतंत्र है, वो जाना चाहे तो जा सकते, नहीं जाना चाहते नहीं जा सकते, नरसिंह के रूप में जाने के मार का खत्म करना है खेल तो नो प्रॉब्लम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकते हैं, स्वतंत्र है वो, स्वतंत्र ईश्वर है।
अजामिल अपापी था फिर भी,
उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जनरली भगवान ऐसे मूढ़ लोगों के सामने नहीं प्रकट होने का अपना वो अधिकार कायम रखते है, नहीं जाते उनके सामने। नाम प्रकाश से सर्वस्व का अर्थ ही होता है आई नेवर मैनिफेस्ट टू द फुलिस एंड अनरिलिजेंट, क्यों, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं योग माया समावृत है, वो लोग मुझे नहीं देख पाते क्योंकि समावृत है, योग माया समावृत, आई एम कवर्ड बाय माय इंटरनल पोटेंसी, इसलिए वो लोग समझ नहीं पाते कि मैं अजम अव्ययम। माया, माया एक प्रकार से जैसे बादल होते हैं, तो बादल या कर्टन जैसे होता है, तो आप भगवान को नहीं देख सकते, आप इधर बैठे हो इस कमरे में दूसरे कमरे में नहीं देख पाते। इस तरह से सूर्य जो है वो आकाश में है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो हम सूर्य को नहीं देख पाते, तो मायावादियों का ऐसा हो जाता है, तो आकाश में बादल दिखते रहते, ऐसे सूर्य तो है ही नहीं, बोले है ही नहीं, सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वो बादल के कारण, वो बादल किसने प्रकट किए थे, सूर्य ने, बादल तो सूर्य से ही पैदा होता है ना, अपने आप तो होता नहीं बादल, तो बादल सूर्य ही प्रकट करता है उसके उसके लिए, जो लोग को भगवान नहीं दिखाना चाहते उसके सामने बादल आ जाता है, और जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए बादल हटा देते हैं।
ऐसे तो हम प्लेन में जाते हैं तो करीबन
36,000 फीट,
यस, तो प्लेन में जाते हैं तो बादल नीचे दिखते हैं, लेकिन सूर्य एकदम साफ होता है, मतलब ये कि अपनी दृष्टि के ऊपर बादल आ जाते हैं, सूर्य के ऊपर बादल नहीं आते, हमारी दृष्टि सीमित हो जाती
है। आगे वाले श्लोक में भगवान यही बताते, क्योंकि हम भगवान को नहीं देख पाते, क्योंकि वो मायावादी लोग भगवान को नहीं समझ पाते, तो क्या भगवान भी मायावादियों को नहीं समझ पाते। कर्टन में तो ऐसा होता है ना कि पीछे वाला आगे नहीं देगा, आगे वाला पीछे नहीं देगा, तो इस प्रकार का होता है कि बादल के कारण वो लोग नहीं देखते। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, करिए
अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता।
हाँ, ये वो थर्ड श्लोक, ये तीसरी बार भगवान ने इस अध्याय में बताया कि भगवान को जानना मुश्किल है, दुर्लभ है। पहले तो मनुष्य नाम सहस्त्र था, दूसरा बहुनाम जन्म नाम अंतर था, और तीसरा ये श्लोक है। कि माम तू वेद है ना कश्चन, मुझे कोई समझ नहीं सकता। वर्तमान अनिचार्जुन व्हाट इज द फर्स्ट वन, वेदा हम समतीता, वेदा हम समतीता वर्तमान अनिचार्य भविष्य नहीं चूता। मैं भविष्य को भी जानता हूँ, भूत को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ, तीनों को मैं जानता हूँ। पहले आप हमारे लाइफ में पहले क्या बीत चुका है वो सब भगवान जानते हैं, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं वो भी भगवान जानते हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान को कोई नहीं समझ पाता, अर्थात वो कर्टन वाला जो सिचुएशन है ना वो वन वे है, टू वे नहीं है, कि मायावादी लोग नहीं देख पाते भगवान को, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। इसलिए जानबूझ करके भगवान ने इसलिए यहाँ पर लगा दिया कि मैं सबको जानता हूँ, वेदाम समझता है वर्तमान मान तो वेद है ना कश्चन, लेकिन मुझे नहीं समझ पाता, कोई नहीं समझ पाता भगवान को। वेरी रेयर, भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है, साधारण लोग भगवान को समझ नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमारे, भगवान सब किस तरह से जानते हैं, भगवान कहते सूर्य चंद्र मेरी आंखें हैं, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भुक्ता महेश्वर, ये आता है 15th या 13th चैप्टर में। तो उपद्रष्टा भगवान उपद्रष्टा है, देखते है, सुपरविजन विटनेस, देख रहे क्या हो रहा है, क्या खा रहे, किससे बात कर रहे, क्या किया, यू नो कौन मोबाइल में किसके साथ चैट किया, यू नो क्या कर, क्या पढ़ा, सब कुछ भगवान सब देखते है, विटनेस एवरीथिंग, हाँ सब कुछ जानते हैं। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि भगवान बिल्कुल आपके पीछे बैठे हैं, सारा देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, किसको बात कर रहे हो, किसके हाथ में लाया, सब देख रहे हैं, विटनेस उपदर्शन अनुमंता परमिशन गे, यहाँ देखो तुम चाहते हो ठीक है परमिशन गे, भरता पालन करने वाले भगवान पालन भी करते, भोक्ता महेश्वर। तो इस तरह से मायावादी लोग जो होते हैं वो ऐसा अगर माने भी कि हम लोग सब कुछ भगवान को जानने का प्रयास करते, उनके सामने पर्दा आ गया है योग माया का, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में सब कुछ जानते हैं एवरीथिंग। इसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन देखने वाला है, कई बार भर लगा जाए, कई बार हम लोग कहते हैं भक्तों को भी कि अगर आप कमरे में अकेले हो, आपके आसपास में कोई नहीं है, और तब जाकर अगर आप भगवान से कुछ स्तुति करते हो, कुछ प्रार्थना करते हो, कोई हृदय से कुछ आप उनसे विनती करते हो, तब जाकर आपको ये भास होगा कि आपकी असलियत क्या है। आप पब्लिक के सामने शायद और बिहेव करते हो या अलग अकेले में और बिहेव करते हो, लेकिन वास्तविकता वही है कि आपका भगवान के साथ इंटरनली किस प्रकार से आप जुड़े हो। हो सकता है कि भगवान हमारे साथ बात करे, इतना महान तो हम है नहीं, लेकिन हम उनको स्तुति कर सकते हैं, उनको विनती कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं, यू नो उनकी महिमा का गुणगान गा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी सामने ऑडियंस की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद खुद करके दिखाया था। प्रभुपाद कभी कभी कमरे में अकेले बैठ करके हारमोनियम पर सॉन्ग गाते थे, वैष्णव भजन अकेले बैठ करके, कोई नहीं, नो डिसाइपल, एक भी शिष्य नहीं, दरवाजा बंद होता था और प्रभुपाद अकेले बैठे सॉन्ग गाते थे, वैष्णव सॉन्ग, वैष्णव आचार्य के द्वारा लिखे गए, हरी हरी विफल जनम भगवान, ऐसे वैष्णव सॉन्ग गाते थे और रोते थे, यूज टू क्राई। तो कुछ शिष्य बाहर बैठते थे, सुनते थे, बड़ा मधुर आवाज, कुछ शिष्य नीचे प्रभुपाद फर्स्ट फ्लोर पर, कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पर बैठ कर सुनते थे कि प्रभुपाद बड़ा अच्छा मधुर आ रहा, माइक वाइक तो करते नहीं थे यूज, बड़ा अच्छा मधुर आवाज आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब जानते हैं, आप अकेले हो, सबके सामने हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो।
हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट है, क्वालिटी इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज लुकिंग एट यू।
यस,
क्वालिटी कहते हैं, कोई नहीं देख रहा है, हमारी कंपनी में काफी जगह बनाया हुआ
है। अच्छा अच्छा स्लोगन है ये, किसी चीज का क्वालिटी तब पता पड़ता है जब आप, कोई आपको नहीं देख रहा है फिर भी आप उसी तरह से काम कर रहे
हैं, राइट, फिर भी आप सही कर रहे
हैं। यस,
सभी अपने जो प्रभुपाद जी का एग्जांपल दिया, तो ज्यादातर हम जितने समूह में भगवान के साथ मतलब जुड़ नहीं सकते हैं, मानो कि कीर्तन में जुड़ जाता है, लेकिन फिर भी जब जुड़ते हैं तो हम मतलब हम और भगवान ही हो जाते हैं, मतलब साथ में है। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी कि अगर जैसे प्रभुपाद जी अकेले थे तो उस समय भगवान के साथ जो भाव जागरूक होता है बराबर, वो बहुत
बहुत दुर्लभ है,
बहुत टॉप में होता है।
यस yes.
बहुत टॉप में होता है।
हाँ, लेकिन ऑफकोर्स हमें वो भाव जागरूक नहीं करने हैं। हमें तो मैं तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप अकेले में हो तभी भी भगवान आपको देख रहे हैं, कहने का तात्पर्य है। उस समय भी अगर आप प्रार्थना करते हो, भगवान को स्तुति करते हो, तभी भगवान सुनते हैं उसको। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, आप कभी अकेले हो ही नहीं, कृष्णा हमेशा आपके साथ है। आप अकेले हो ही नहीं, चाहे आप किसी प्लेन या ट्रेन में अकेले बैठे हो, या समझ लो किसी आप मुस्लिम बस्ती के बीच में आप अकेले जाके बैठे हो। हमारे एक वक्त गया था इस तरह से, तो मुस्लिम बस्ती में बेचारा अकेला, और वो भी दंगे की सीजन में, तो इस तरह से अकेले बैठते हो। या फिर आप ऑपरेशन थिएटर में सब डॉक्टर के बीच में अकेले बैठे हो, फिर भी कृष्णा आपके साथ है, कृष्णा आपसे दूर नहीं है, ये विश्वास होना चाहिए। सो कृष्णा, जैसे एक प्रभुपाद जी का लेक्चर में बताए थे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये ओवर पॉपुलेशन को लेकर के प्रभुपाद ने बताया था, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, हरीश्वरी प्रभु की डायरी में से, कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत फैल गया है, पब्लिक बहुत बढ़ गई है, इसलिए अन्न की कमी हो रही है, खाना कम हो रहा है इत्यादि, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, एक दो मर जाए तो अच्छा है, कोई नुकसान नहीं उसमें। बट प्रभुपाद से ओवर पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वैदिक संस्कृत में। ओवर पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये हमने बनाया गया है ओवर पॉपुलेशन। भगवान सब कुछ जानते हैं, वो वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं, तो वो आपकी आवश्यकता के अनुसार सारा दे देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन आप प्रभुपाद दिस यू सिनफुल पीपल, यू नो पीपल आर पनिश्ड ड्यू टू सिनफुल एक्टिविटी, लीडर्स मिसमैनेज एंड दे गिव सम थियरी ऑफ ओवर पॉपुलेशन। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप मिसमैनेज कर रहे हो, आपको आता नहीं किस तरह से मैनेज करना, इसलिए आपने ओवर पॉपुलेशन का नाम डाल दिया ताकि आप ब्लेम से दूर रह जाओ। प्रभुपाद वेरी क्लियरली सेड, इट इज व्हेन पीपल आर पुट इनटू जेल, इट इज नॉट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, इट इज ड्यू टू ओवर क्रिमिनलिटी। उसमें ओवर पॉपुलेशन के कारण जेल में नहीं, सेम वे सिमिलरली व्हेन देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ फूड, इट इज नॉट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, इट इज ड्यू टू देयर ओवर क्रिमिनलिटी। ओवर पॉपुलेशन नहीं है ये ओवर क्रिमिनलिटी है, या लोगों की लोग बढ़ नहीं गए हैं लेकिन पाप बढ़ गए हैं, इसलिए आपको ओवर पॉपुलेशन लग रहा है, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, ऐसा नहीं होता है।
ये भी है कि देवी देवताओं के थ्रू उन्होंने रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिया।
भगवान करना चाहे तो कर सकते, प्रकृति खुद करती है तो भगवान की परमिशन नहीं मांगती, प्रकृति खुद ही बोले मेरी संपत्ति अगर आपने कुछ बना करके समझ लो कि एक्स आदमी को दिया और वो पूर्ण रूप से एक नष्ट करने में तुला है सब कुछ, तो आप उसको क्यों दोगे। अगर आपने कुछ सामान दिया, वो उसने उससे बम बना दिया और बम बना करके 10,000 आदमी को मार डाला, तो आप दूसरी बार कुछ दोगे उसको, नहीं दोगे। सेम वे प्रकृति आपको दिया लेकिन आप उसका दुर्बनाकर उपयोग करके सबको मार डाला, तो क्यों प्रकृति आपको देगी फिर, सीधी सी बात है। रीजन क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है आप उससे अधिक इकट्ठा करने का प्रयास करते हो, इसलिए जैसे सर्वे भी हुआ था कि वर्ल्ड में कितना 1/3 के पास 2/3 का पैसा है, समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन इंडिया का भी इस तरह का सर्वे हुआ था कि इंडिया में कुछ 19 लोग के पास पूरे भारत का जितना पैसा हो सब उसके पास, समथिंग लाइक दैट।
हाँ, 5% पॉपुलेशन जो है उसके पास 95% जितना पैसा,
हाँ सोचिए समथिंग लाइक दैट, तो ये तो वॉट 100% मिसमैनेजमेंट है। एक आदमी रो रहा है और एक आदमी राजा को उसको फेंक रहा है पैसे को, हाँ, और लेविश फिश कर रहा है कुछ भी, उसके कपड़े धोने के लिए फॉरेन भेजेगा वाह है ऑफकोर्स है आपके बात से, लेकिन जो लोभ वृत्ति है वो तो कर्म जनरेट के बाद हुई। अगर समझ लो कि आपके कोटे में समझ लो कि 5 लाख रुपया लिखा है आपका कोटा है, लेकिन आपको सुविधा मिली, आपने गोलमाल किया और 5 का 50 कर दिया, तो आपका कोटे में 5 लाख था, 45 लाख का कर्जा चुकाओ, इस तरह से आपने कर्जा ले लिया। बाकी ऐसे कितना 9 लोग ऐसे थे जिनको 5-5 मिलने वाला था, सबका आपने ले लिया, तो वो 9 जो आदमी है वो बेचारे रुक रहे, और उसका भी कनेक्शन होगा पूर्व जन्म में, उसने भी किसी का ले लिया होगा तो वो भुगत रहे ऐसा तो कुछ। ये कर्म का जो नॉलेज साइंस जो है तो बहुत मुश्किल है समझना, बट द पॉइंट इज कृष्णा नोज दैट, भगवान जानते हैं इस विषय को। सो टेक्स्ट नंबर 27 में भगवान बताते हैं कि वो लोग किस तरह से फिर मुक्त हो सकते हैं माया से। पढ़िए,
ये भारत ये शत्रु विजय का सर्व सर्व जीव जन्म लेने इच्छा तथा व्यस्ती उत्पन्न तथा द्वंद्व की मोहग्रस्त थे आसक्ति ने पामे थे।
भगवान ने एक आगे वाले श्लोक में क्या कहा था, माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? ये है रीजन, लोग जन्म लेते हैं अज्ञानता में, उनका जीवन का आरंभ भी अज्ञानता से होता है, इच्छा द्वेष के साथ ही जन्म लेते हैं, और उनके मन में निरंतर इच्छा द्वेष चलता रहता है, पहले से ही पता है ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, बचपन से माता पिता भी सिखाते हैं बेटा ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, पहले से ही इस तरह से उस जन्म ही इस तरह से लेता है, इच्छा द्वेष समर्थ है ना, द्वंद्व मोह है ना, भारत डिजायर एंड हेट्रेड, डिजायर एंड हेट्रेड, राग द्वेष, कोई किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को फेंक देना, किसी को एक्सेप्ट, यही भला यही मंद सब मने भ्रम, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सर्व मनोधर्म, जैसे कहें कि द्वैते भद्र अभद्र ज्ञान, द्वैत होता है अर्थात ड्यूअल, अच्छा बुरा काला सफेद, गर्मी ठंडी सुख दुख, जो पैर में होता है जो दो दो उसको द्वैत बोलते हैं, द्वंद्व, तो द्वैते भद्रा अभद्र ज्ञान, भद्र अभद्र, भद्र का अर्थ अच्छा बोलते हैं ना, ये भद्र वस्तु है और ये अभद्र वस्तु है ऐसे, तो द्वैते भद्र अभद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही सब ब्रह्म, ये सब मन का धर्म है, ये वास्तविकता नहीं है, सब यही भालो यही मंद, ये अच्छा है ये बुरा है, सब मन ब्रह्म, ये सब मन का भ्रम है। आपको लगेगा कि प्रभु जी इसमें तो हम खुद ही बोलते हैं कि ये अच्छा है बुरा है, चार चीज नहीं करनी चाहिए, चार चीज करनी चाहिए, लाइक दैट, आई मीन हम खुद ही बोलते हैं ऐसे, लेकिन अगर जो परमेश्वर को पूर्ण रूप से जानता है वो सब जानता है, ये बहिरंगा शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति है, ये पंच महाभूत से बना, वो उसमें कोई भद्र अभद्र है ही नहीं, अज्ञानता को भी वो पहचानता है और उसको पता है कि ये माया जो है बहिरंग शक्ति वो भी हमारे हेल्प करने के लिए ही है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, माया भी हमारी सहायता करने के लिए है। क्यों? क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से पक्के नहीं हो जाते तब तक हम भगवान के धाम जा नहीं सकते, तो हमें पक्के करने के लिए कोई तो एग्जामिनर चाहिए ना, भाई आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप हमें पता पड़े कैसे पड़ेगा कि आप जो पढ़ा है सब सही पढ़ाए, आपको आ गया, असेसमेंट कैसे होगा? ये काम माया कर रही है कि आपका असेसमेंट करती है हर क्षण पे हर कदम पे, आपको नई नई चीज देती है, चेक करके दिखाओ तुम माया कैसे आकर्षित हो या भगवान के भक्त हो, चेक करके हर नई नई कदम पे, हर सन्यासी बन जाने के बाद भी चलता रहता है उस समय तक। और मैं तो सुना है यहां तक कि सन्यासी तो छोड़ो, शरीर छोड़ने के बाद अगर आप वैकुंठ की ओर जा रहे हो, वैकुंठ धाम में, तो वैकुंठ धाम में जाते समय ऑन द वे स्वर्ग वाले लोग आपकी पूजा की थाली लेकर आपके सामने आएंगे, आरती उतारेंगे, पुष्प डालेंगे आपके चरण में, कितने महान सौभाग्यशाली आप वैकुंठ धाम जा रहे हो, जाते जाते दो मिनट हमारे स्वर्ग को भी देख पावन करते जाइए, ये ना। और ऐसा बोल करके बहुत सारी अप्सराएं नृत्य करेगी करेगी, और उसमें फिर आप बोलते हैं इतना आदर दे रहे मैं जीवे क्या बोलते जन्म सार्थक करी परोपकार, तो स्वर्ग लोग वहां पर भी थोड़ा प्रचार करे, इसको उनकी पिता का फल के आ जाता हूँ यू नो, और लोग वहां पर भी एक दो सेशन दे देता हूँ, तो पता पड़ेगा भगवान को भी कि ये तो हीरा निकला यू नो, स्वर्ग में भी प्रीचिंग करके आया, लेकिन वो फंस जाता है बेचारा यू नो, वो माया में वहां पर अटक जाता है, तो स्वर्ग में जाकर के फंस जाता है, तो वह उसके बाद उसको लगता है अरे बाबा इतने यही इतना अच्छा है तो वैकुंठ के जाने की क्या हो सकता है, यही सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए यहां तक भी हमारी परीक्षा हो सकती है, इसे इस बहुत सावधान रहना चाहिए। सो भगवान यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं टू लाइन्स, सच डिल्यूटेड पर्सन सिम्टोमेटिकली ड्वेल इन ड्यूअलिटीज ऑफ डिसऑनर ऑनर मिजरी हैप्पीनेस वुमन मैन गुड एंड बैड प्लेजर एंड पेन एटसेट्रा थिंकिंग This is my wife, this is my house, I am the master of this house, I am the husband of this wife, these are the dualities of delusion. Those who are so deluded by dualities are completely foolish, therefore cannot understand the supreme personality of Godhead. जो लोग इस प्रकार से द्वंद के द्वारा हार चुके हैं, ये लोग कभी भी नहीं समझ पाते भगवान को। सो क्या यहाँ पर सबसे पहले हम बचपन से जैसे जन्म हुआ इच्छा द्वेष, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। इच्छा द्वेष अभी एक ज्ञानी का रियलिटी आगे भगवान बताते हैं कि ऐसा कोई होता है क्या, अगर आपने ये भगवान ने यहाँ बता दिया कि इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, तो फिर ऐसा भी कोई होता है कि जो इसको दूर करके मेरी शरणागत हो सके, भगवान का भक्त बन सके, ऐसा भी कोई उदाहरण है, ये पॉसिबल है? तो भगवान बोलते हैं यस पॉसिबल है। पढ़िए नेक्स्ट।
जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्मों में पूर्ण पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः छेदन हो चुका है होता है, वे मुख्य द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं।
हाँ, ये तो अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ये द्वंद्व मोह निर्भरता भजन जमा विरोधता, तो ये शाम तो अंतर्गतम पापम है। वो लोग जो द्वंद्व मोह से मुक्त हो चुके, द्वंद्व और मोह यहाँ पर भगवान ने दोनों शब्द का उपयोग किया। प्रभुपाद जी का एक जगह बताया कि मूड होता है मूड, वो एक लेक्चर में होता है स्मॉल मूड होता है, एक बिग मूड होता है, एक छोटा मूड एक बड़ा मूड। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतना चाहता है, ये जो नेता बनना चाहता है या राष्ट्रपति बड़ा प्रधान बनना चाहता है प्राइम मिनिस्टर ये सब बनना चाहता है, वो छोटा मूड है स्मॉल मूड, और जो भगवान बनना चाहता है वो बड़ा मूड है यू नो। तो इस तरह से देयर स्मॉल मूड है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स, थिक लेयर्स। समझ लो मिट्टी का एक लेयर लग जाता है, काफी समय से उसको साफ नहीं करते, कुछ समय के बाद उसके ऊपर दूसरा मिट्टी का लेयर, फिर तीसरा मिट्टी का लेयर, चौथा मिट्टी का लेयर, बाद में तो अगर आप 100 साल के बाद उस स्थान पे आओगे तो आपको फर्श दिखेगी, और उस पर वो मिट्टी का लेयर जो होगा उसको तो फूक मार से भी नहीं जाएगा, वो तो जम गया है ना, एक के बाद एक के बाद एक कितने सारे लेयर आते जम जाता है। तो हमारे चेतना पर इच्छाओं के ऐसे लेयर कई जन्मों से आते ही रहते हैं, और जम गया पूरा मिट्टी जम गया चेतना के ऊपर इच्छाओं के कारण। अभी इतना सारा मिट्टी है तो वो तो ऐसे धुलेगा नहीं, तो इसलिए प्रभुपाद जी का बताया भी कि संसार में शुभ जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, शुभ कुछ नहीं है। मृत्यु के अतिरिक्त संसार में कुछ भी शुभ नहीं है। मृत्यु सबसे उत्तम है। क्यों मृत्यु? क्योंकि वो होता है वहां पर आपका परीक्षा है, आप चाहो तो उसको इसमें से निकल करके भगवान के धाम जा सकते हो। अंत होता है वो इच्छा द्वेष का एक रूप से, लेकिन वो दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हम। हाँ, तो देयर इज नथिंग ऑस्पिशियस। और यहाँ पर कहा येषाम त्वंतगतम पापम, जब पाप से मुक्त हुए है जनानाम पुण्य कर्मणाम, और उन लोगों के पुण्य कर्म का उदय हुआ है। तो पुण्य कर्म का उदय कैसे होता है? कोई दान करता है, कोई तप करता है, कोई कुआ खुदवाता है, हॉस्पिटल बनवाता है, इत्यादि बहुत सारे कर्म करता है। लेकिन बहुना ना ब्रह्मांड ब्रह्मीज को न भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ब्रह्मांड ब्रह्मीज कोई भाग्यशाली जीव कोई होता है उसी को ये गुरु कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है, सबको नहीं मिलता है। बहुत सारे शुक्र हमने बताया था अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले, कि एक होता है भोगोन्मुखी सुकृति, कुछ न कुछ ऐसे पुण्य करने से आपको भोग मिलते हैं, यू नो मर्सिडीज गाड़ी मिलती है, बड़ी हवेली मिलती है रहने के लिए, यू नो सुंदर पत्नी मिलती है, ये सब आपको भोग मिलता है कुछ पुण्य करने से। कुछ पुण्य अर्जित किए तो आपको यू नो यूरोप क्या बोलते हैं वो कहावत है ना, क्या कहावत है, इट इज से अमेरिका की नौकरी, भारत का पत्नी और निवास स्थान यूरोप में। अगर ये तीन को किसी को मिल जाए, ये तीन चीज किसी को मिल जाए, यू नो
अमेरिकन सैलरी,
इंडियन वाइफ एंड यूरोप में रेसिडेंस, अगर ये तीन चीज किसी को मिल गया तो इज लकी, यू नो ऐसा माना जाता है। लेकिन यू नो ये बहुत सारे पुण्य करने के पश्चात सर ऐसा कुछ मिल भी जाए, लेकिन भोगोन्मुखी सुकृति हुई है। फिर मोक्षोन्मुखी सुकृति, कुछ ऐसे सुकृति होती है, जैसे आप किसी तीर्थ में जाकर के स्नान किया, किसी जगह पर कोई परिक्रमा कर ली, या किसी पर्टिकुलर व्रत तप कर दिया, तो इससे क्या होता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है आपको, मुक्ति उन्मुखी सुकृति। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति जो होती है वो भी दुर्लभ होती है। ऐसा जरूर नहीं कि आप दान तप किया तो आपको भक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पुण्य से भक्ति उत्पन्न होती ही नहीं है। पुण्य कर्म भक्ति का आधार कभी नहीं हो सकता। भक्ति भक्त्या संजायते भक्ति, भक्ति केवल भक्त से ही प्राप्त होती है। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है उस व्यक्ति को गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, उस व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण प्राप्त होती है, उस व्यक्ति को किसी वैष्णव की संगति प्राप्त होती है। इसको पुण्य कर्म नाम कहा गया है। पुण्य कर्म नाम का अर्थ ही यह होता है कि किसी साधु की संगत हमें प्राप्त हो, किसी वैष्णव की संगत प्राप्त हो, ये पुण्य कर्म नाम। और कोई पुण्य कर्म है ही नहीं, बाकी सारे पुण्य कर्म केवल धोखा है। दिस इज द ओनली पुण्य कर्म। वो व्यक्ति ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो व्यक्ति भजन्ते माम निर्मुक्ता। तो जैसे कोई व्यक्ति को ये पुण्य प्राप्त होता है, जैसे कुछ को पूर्व जन्म में मिला था भक्ति लता बीज, तो इस जन्म में क्या होता है, अचानक से दिखता है कि वो मृदंग अच्छे से बजाता है, भगवान के प्रति उसका पहले से लगाव है, अर्चा विग्रह की पूजा तुरंत ही करना शुरू कर दिया बच्चे से ही, पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म में उसने भक्ति लता का बीज लिया था, पूरा नहीं कर पाया, तो इस जन्म से आगे कर रहा है। योग भ्रष्ट हो जाए तो बड़ा छठे अध्याय में, तो हाँ तो वो इस तरह से जुड़ सकता है। लेकिन जैसे नारद मुनि, नारद मुनि दासी का पुत्र था, लेकिन जैसे भक्तों की संगति पुण्य कर्म नाम द्वंद्व मोहन निर्मुक्ता, ये इसका साधन क्या है, किस तरह से हो सकता है, अगर आप चाहो तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रता का अर्थ होता है विथ फुल डिटर्मिनेशन, पूर्ण दृढ़ता के साथ। तो पूर्ण दृढ़ता के साथ अगर किसी को भक्ति योग में जुड़ना हो, दृढ़ता को आप डेफिनेशन क्या करते हो, किस तरह से डिफाइन करो, दृढ़ किसको कहते हैं भक्ति में, दृढ़ किसको कहते हैं?
That following this path is the ultimate
recognition. Yes, this is ultimate path to follow. Yes, very nice. Then भक्ति में दृढ़ किसे कहते हैं?
गुरु के आदेश एक गुरु मंत्र
व्यवसायत्मिक बुद्धि दिस इज अ साधन, इसको और कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। अर्जुन देख रहा था पक्षी की आंख, और कुछ नहीं दिख रहा है उसको अर्जुन, और क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिखता है, और कुछ नहीं। और जनरली हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें गुरु की आदेश के साथ साथ बहुत सारी चीज दिखती है, तो इसलिए हम इसको भी करना चाहते हैं, उसको भी करना चाहते हैं, इसको भी करना चाहते हैं, और सारे कृष्ण भक्ति दिखी, सब में कृष्ण भक्ति दिखाई दे रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि यही तो, ये भी तो कृष्ण भक्ति है, वो भी तो कृष्ण भक्ति है, लेकिन ये है दृढ़ता का अर्थ। व्यवसायत्मक बुद्धि एकेह गुरुनंदन, केवल वही व्यक्ति सफल हो सकता है। जो कार्य आपको गुरु ने दिया है, जो कार्य आपको प्रभुपाद ने दिया है, जो कार्य आप यू नो आपके ऑथोरिटी ने दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग, तब आप सफल हो सकते हैं। और दृढ़व्रता का
जैसे लक्ष्य कृष्ण भगवान अपने को कृष्ण के प्रति सुनना, ये भगवत गीता पढ़ना, ये सब जैसे कि भक्ति की, जैसे कि भगवान की सेवा करना है, जैसे अपना लक्ष्य है कृष्ण के पास ही जाना है, यानी पोलो वृंदावन धाम।
ओके,
तो दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति में अपने को दृढ़ता से माला करनी है।
वेरी गुड। सो एक प्रश्न मैं आपको बोलता हूँ, जस्ट एक मिनट में कंजस्ट से कुछ भी, आप ज्यादा लंबा नहीं बताएं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट टाइम है, तो हम थोड़ा आप बोलना चाहो इसके ऊपर बोल सकते हो कि आप इस समय, आज हुआ 19 मार्च 2020। अभी आप आगे कृष्ण भक्ति को कंटिन्यू करना चाहते हो, क्यों? व्हाई? गेट मी सम वाटर, मैं पानी पीने के लिए सारी बताइए।
कि ये भौतिक संसार, ये भौतिक जो सुख है दुख है, भव रोग लगा है हमको, उससे बाहर निकलना है, और हमको सुख की प्राप्ति के लिए हमको वैकुंठ धाम जाना है, इसके लिए हमको भक्ति करनी है।
वेरी गुड। फिर
भवसागर से मुक्त
होना, भवसागर से मुक्त होना कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। फिर
ये
आपकी स्वाभाविक स्वरूप स्थिति है, स्वरूप स्थिति है। यस। और
गोलोक में अपना जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वहाँ जाने के लिए हमें
हमें तो करना ही पड़ेगा, और समय नहीं है। फिर
गुरु को वचन दिया है,
गुरु का वचन दिया है। यस। और आप भाई कुछ क्यों करना चाहते हैं भक्ति?
ये भौतिक संसार के मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से
पार। वेरी गुड। एक और प्रश्न, ऐसे कौन सा कोई पर्टिकुलर, हर एक भक्त का अलग अलग हो सकता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको भक्ति में स्थिर रखने में बहुत बड़ा सहयोग देती है? हर एक का भक्त का अपना अलग अलग हो सकता है, इट कैन बी मोर देन वन, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हम केवल एक ही शेयर सुनना चाहते हैं आपसे, एक ही बात कि जो आपको भक्ति में दृढ़ बनाने में बहुत सहाय करता है, कोई भी एक ऐसा एक रीजन। यस।
कृष्ण कथा और भक्तों का संग,
कृष्ण कथा और भक्तों का संग से आपकी कृष्ण भक्ति में आपको दृढ़ होने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। यस यस महाराज, भक्तों की संगत से, दैट इज वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल करती है। That is what I am asking for. Yes. और कोई?
भगवत कथा।
जी,
भगवत कथा श्रवण,
भगवत कथा का श्रवण करने से आपकी दृढ़ता स्ट्रांग होती है, ऐसा। यस।
भगवान का कीर्तन,
कीर्तन
भगवान के मंदिर के सामने करो,
कहीं पर भी
के साथ करो।
यस। उससे आपको दृढ़ होने में बड़ी सुविधा होती है। यस। वेरी गुड।
आचार्यों की लाइफ और इन प्रिंसिपल प्रभुपाद्स लाइफ
वो आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है। यस, प्रभुपाद के लाइफ इज बिग मोटिवेशन। यस, मतलब आप कुछ कहना चाहते?
जैसे भौतिकवादी लोग है, मतलब आम लोग है, वो सुबह सुबह पानी काम के चक्कर में, जैसे नौकरी के चक्कर में सब लगे हुए होते हैं। yes. और जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो सुबह सुबह माँ जपमाला करते हैं मंदिर में।
इससे आपको बड़ा विश्वास? यस, वेरी नाइस। जैसे मैंने कहा कि ये मोर देन वन हो सकता है। मोर देन वन का अर्थ होता है एक से अधिक हो सकता है। हम केवल एक ही आपसे जानना चाहते थे, राइट? तो मैं अपने विषय में भी आपके शेयर कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिससे उत्सव होता है, बट ऐसे प्रभु से इन माई मेरे इंडिविजुअली में छह गोस्वामियों मुझे बहुत बड़ा, सिक्स गोस्वामी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा वो मोटिवेशन है। आई मीन आई फील वेरी मच छह गोस्वामी को लेकर के। तो दिस वन ऑफ द मोटिवेशन और दृढ़ता जिससे प्राप्त होती है।
अभी सुनते हैं उनके बारे में तो
यस
लोगों ने दिया है।
यस, वेरी गुड। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति भक्ति किसी भक्त की संगति प्राप्त कर लेता है, तब वो व्यक्ति पुण्य कर्म नाम प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद ने बताया था, गॉड कॉन्शियसनेस इज नॉट चीप थिंग। भगवत भावना है वो कोई सस्ती वस्तु नहीं है। इसलिए जो पूर्ण रूप से सब प्रकार के भौतिक कर्मों से नष्ट हुआ है अंतगतम पापम, वो ही व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो सकता है। सब नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यू नो कोई भी आ गया एनीबॉडी कैन कम, ऐसा कुछ नहीं है। पुण्यकर्म नाम ये क्राइटेरिया आ गया, जिसका पुण्य पाप नष्ट हुआ है, जिसके पुण्य का उदय हुआ है, वो भक्ति में जुड़ता है। यस,
जैसे आपने बताया दिस इज वेरी इजी, मतलब ये समझना सरल है कि जो छोटा बच्चा है वैष्णव फैमिली में तो वो मतलब शुरुआत से भक्ति में है, मगर ऐसे कोई कुछ है जो 15 साल की उम्र से जुड़ता है, कोई 30-60 साल की उम्र से जुड़ता है, तो हम कैसे समझे इसको?
डिपेंड्स, जैसे उसको अवसर तो सभी मिलता ही है सब जगह, लेकिन कुछ लोग को अवसर 10 साल के बाद 15 साल के बाद उसको अवसर का उपयोग करना आता है उसको, और कभी कभी तो पूरा जन्म निकल जाता है। उसको 100 अवसर मिल गए लेकिन उसने उपयोग ही नहीं किया अवसर का, तो दूसरे जन्म में फॉरवर्ड होता है वो, लेकिन उसको वो नष्ट नहीं हो जाता। अगर समझ लो कि एक जन्म में उसने कुछ किया था, दूसरे जन्म में उसका अवसर दिया, दूसरे जन्म में उस अवसर का उपयोग नहीं किया लेकिन गुणित कार्य किए, बहुत उल्टे सीधे काम किए, तो अभी इसके परिणाम स्वरूप उसको नरक में जाना पड़ेगा एक बार। तो उसको वहां भेजे भी जाएगा, तुम जाओ एक बार नरक में जाकर के वापस आएगा, फिर से वो अवसर वाली गेम शुरू होगी, लो फिर अवसर प्राप्त होगा। और उसके पुण्य इतने है, अगर उसकी भक्ति इतनी स्ट्रांग है या उसने कुछ भी किया है पूर्वजन्म ऐसा कि उसको दोबारा मनुष्य ही मिलने वाला है हर बार, वो भी हो सकता है। हर बार उसको मनुष्य जन्म, दूसरी बार, तीसरी बार मनुष्य, चौथी बार मनुष्य जन्म, पाप करने के बाद भी मनुष्य जन्म। और हो सकता है कि उसकी जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है वो नष्ट भी हो सकती है। कैसे? वैष्णव अपराध किया, कि वैष्णव को कष्ट दिया, उसकी निंदा कर दी, तो भक्ति उन्मुखी जो सुकृति है जिसके द्वारा भक्तों का संग मिलता था वो नष्ट हो जाता है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसको अवसर मिलने वाला था लेकिन उसको अवसर मिले उससे पहले अवसर को ही मना कर दिया। तो इस तरह से पुण्य कर्म नाम को लेकर के प्रभुपाद ने कहा है कि आप देखो तो प्रभुपाद एक जगह कहे थे कि तुम सब भक्तों का पाप नष्ट नहीं हुआ है और पुण्य का उदय हुआ है ऐसा मत मानना, पाप नष्ट हो चुका है पुण्य का उदय हुआ इसलिए तुम सब भक्ति में जुड़े, ये मत मानना। मैंने तुम्हारे पुण्य क्रिएट किए हैं, प्रभुपाद सेड दिस थिंग। तुम्हारे पुण्य थे नहीं अमेरिका में पीस के, वो तुम्हारे पुण्य थे नहीं, मैंने तुम्हारे पुण्य क्रिएट किए हैं। इसलिए जो कोई व्यक्ति भक्त पाप से मुक्त नहीं हुआ और भक्ति का दिखावा कर रहा है, तो वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति का आभास है, भक्ति आभास, उसको बोल रहे भक्ति आभास। एक भक्त मुझे मिला था, वो कह रहा था कि प्रभु जी मुझे एक दिन ऐसा हुआ मैं आंखों में से पानी आ गया, ये हो गया वो हो गया, और मैं उस दिन को कभी भूल ही नहीं सकता, इट्स सच अ वंडरफुल डे ऑफ लाइफ एंड दिस दैट। उसके बाद भी अब दुनिया भर की सारी नॉनसेंस काम कर रहा है अभी भी, तो उसको क्या माने, उसको भक्ति मानेंगे? नहीं, वो भक्तियाभास था। जब तक अभी पाप नष्ट नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद इतने दयालु है कि उनके पुण्य क्रिएट कर दिए, कितने दयालु है प्रभुपाद। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो क्या बोलते हैं, भूरी गृणंति ये भूरी दाजना, ये भक्त लोग केवल दृष्टि करने से उद्धार कर देते हैं। वैष्णव इसलिए रहर होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, कि वो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी उस व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। दैट इज द स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ वैष्णव। जब आपको कोई आपकी, मैंने बताया था कुछ दिन पहले, आपको कोई कष्ट दे, आपकी निंदा करे, आप उसको सहायता करते हो, दैट इज क्वालिटी ऑफ वैष्णव, ये वैष्णव की क्वालिटी है।
जैसे किसी भक्ति सुकृति नष्ट हो गई हो, करेगा उसको वापस जागृत
उसको जागृत करना है, तो वही अगर भक्तों की संगति करेगा तो प्रभुपाद ने उन लोग के पुण्य कैसे क्रिएट किए। उनके पास तो बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो शक्ति था वो अपना संग दे करके। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, तो प्रभुपाद ने सोचा मैं लव क्या, मैं तो उनको दे देता हूँ पूरा समय, सालों के सालों मंथों के मंथ मेरे साथ रहो इधर, लव मात्र से, तो संग मात्र से उद्धार कर दिया। तो वैष्णव की संगति का कुछ नहीं करते आप, वैष्णव के पास जाकर केवल बैठे आधा घंटा, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं किया, उधर सामने बैठे बस हो गया, फिर भी आपका प्रभाव पड़ता है। वही माया हरिदास ठाकुर के पास वही तो हुआ, वेश्या आई थी, कुछ नहीं किया, बैठो सामने, कुछ नहीं किया, बैठी रही, फिर भी तीन दिन में परिवर्तन हो गया पूरा। ये है वैष्णव की संगति का जनाना पुण्य कर्मणा। सो अभी अंत में दो श्लोक में भगवान बताते हैं, ये 29 नंबर का जो श्लोक है उसमें योग मिश्र भक्त की जो मैं बात किया था ना आगे, कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्त है, और ये योग मिश्र भक्त कैसा होता है उसकी बात हो रही। पढ़िए,
जो जरा तथा मृत्यु में भक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म के ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं।
हाँ, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति, ऐसे भक्त को ब्रह्म कहा गया है, वो अध्यात्म के विषय में सब कुछ जानता है, कर्म के विषय में तो भगवान जानबूझ करके ऐसे टर्मिनोलॉजी दिए, अध्यात्म कर्म ब्रह्म। तो ये उस योगमेश्वर भक्ति जो वो थे ना, क्या था, मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकल या शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम तैव शांत। तो अभी तक भगवान ने भुक्ति कामी बताया था, मुक्ति कामी बताया था, यहाँ पर सिद्धि कामी बताया है। तो इस प्रकार का वो सिद्धि या वो ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, या भगवान की ऐसा व्यक्ति जो होता है योग मिश्र भक्त सकाम, उसके भी इच्छा है, तो उसको दे आर एक्चुअली ब्राह्मण इंटेलिजेंट पर्सन एंडिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ, टेक रेफ्यूज इन मी इन डिवोशनल सर्विस। सो वो लोग भी भगवान के शरणागत तो होते हैं, लेकिन इच्छा के साथ, इच्छा है उनकी हृदय में, वो इच्छा के, इसलिए वो अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। हाँ, ये मिश्र भक्ति है, और यहाँ पर कर्म अध्यात्म इत्यादि सब टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है। यस।
गुरु ये मामा श्रीत्य है जो है तो मतलब उसमें ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों कवर है या सिर्फ भगवान मतलब ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ
यस जिसको जिस तरह से लेना है क्योंकि हो सकता है कि अगर वो स्वयं भगवान के जैसे भगवान बताया चतुर्विधा भजन्ते मां तो चतुर्विधा में भी वो ब्रह्म परमात्मा वाले नहीं थे डायरेक्ट भगवान वाले ही थे हो सकता है उसमें से कोई परमात्मा वाला हो दैट इज फाइन लेकिन जब भगवान बताया कि वो मेरे शरणागत हो रहे मामा श्रीते तो आइडियली इट इज भगवान इट्स नॉट पर्टिकुलरली ब्रह्म और परमात्मा लाइक दैट लेकिन फिर भी सकाम है इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है और अंत में 30 नंबर के श्लोक में
जिन मनुष्य मैंने परमेश्वर में हमारे पूर्ण चेतना में रहने मैंने जगत में देवों तथा यज्ञ में सर्व पद्धतियों नियामक जाने छे तेओ पोताना मृत्यु समय पण मैंने भगवान तरीके जानी तथा समझी सके
हाँ यहाँ अधिभूत अधिदेव अध्यात अधियज्ञ ये सब का वर्णन आ गया कि अधिभूत क्या है अधिदेव ये सब तो इस तरह से कोई जानता है वो व्यक्ति ये सारी चीजों को एक जो समझता है वो व्यक्ति अंत में भगवान का चिंतन करने में सहायता होती है उसको वो समझ सकता है अंत में जीवन के अंत में मेरा चिंतन कर सकता है इवन एट द टाइम ऑफ डेथ पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में मुझे समझने का प्रयास करता है ऐसे तो एक्चुअली यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है और सब मिला करके विशेष करके भगवान ने अर्जुन को कहा यहाँ पर कि तुम मृत्यु समय तो मैं युद्ध भूमि में हो यहाँ पर इसको द्रोण भीष्म इत्यादि सब सामने खड़े हैं दुर्योधन सब है तो इन सब लोगों को तुम्हें मारना है लेकिन तुम तो अंतकाल में मेरा चिंतन कैसे कर पाओगे तुम तो इस एक भगवान यहाँ बताते हैं कि यू कैन ऑल्सो डू दैट बाय नोइंग मी इन ऑल दिस डिफरेंट ऑल दिस थिंग्स ब्रह्म अध्यात्म अधियज्ञ अधिदेव ये सबको जान करके तुम मेरा चिंतन कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डेथ तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अर्जुन का वो यहीं से शुरू होता है कि ये सब आपने बता दिया लेकिन ये सब है क्या सो आई वॉज थिंकिंग कि आपको इसका संक्षिप्त में बता दे कौन से एग्जाम्पल इस श्लोक में यूज किए हैं ओके सो 7.7 में माला का एग्जाम्पल है थ्रेड उसमें वृक्ष का एग्जाम्पल भी है प्रभुपाद वृक्ष का एग्जाम्पल भी देते फिर 7.8 में सनशाइन सूर्य प्रकाश 10 में वृक्ष 12 में राजा 14 में रस्सी 15 में छाया 15 में गधे का एग्जाम्पल भी है प्रपद देते हैं फिर 23 में शरीर के अंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी शरीर के अंग देवताओं को लेकर के 26 फिर से सूर्य जो अभी हमने चर्चा किया था अभी सो इस तरह से चैप्टर 7 में अंत में ये समाप्त हुआ अलग अलग विषय को लेकर के, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इत्यादि। तो नेक्स्ट ऑब्वियसली है कि नेक्स्ट जो है वो अर्जुन से शुरू होना है कि ये सारे जो आपने बताया वो वास्तव में क्या है, एग्जैक्टली क्या है आप जो बताना चाहते हो। तो